بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگیے محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज गुरुवार है, इस फंद की 26, शाबान की 14 और मार्च की 17 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष को युद्ध अपराधी कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिम यूक्रेन को हथियार देकर और लड़ाके भेजकर यूक्रेन में खून खराबे का कारण बन रहा है। राष्ट्रसंघ ने कहा है कि कम से कम 10,000 यमनी बच्चे मारे गए हैं। हिजाब के मुद्दे को लेकर भारतीय मुसलमानों ने आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। और अब आप मोहम्मद मेहदी से विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के दक्षिणी प्रांत हुरमुज़गान में गुरुवार की सुबह भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई। गुरुवार की सुबह आने वाले भूकंप के कारण हुरमुज़गान प्रांत के कई क्षेत्रों की बिजली कट गई। ये भूकंप स्थानीय समय के अनुसार भोर के समय 3:06 पर आया। भूकंप ग्रस्त क्षेत्र के लिए रेड क्रिसेंट की टीम रवाना कर दी गई है। हुरमुज़गान प्रांत के रेड क्रिसेंट के महाप्रबंधक ने बताया है कि यह टीम संभावित नुकसान की अभी समीक्षा कर रही है। हालांकि समाचार मिलने तक आज आने वाले भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को जापान में 7.3 का भूकंप आया था, जिसके बाद लाखों घरों की बिजली चली गई थी। इस भूकंप में 4 लोगों के मारे जाने की सूचना है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने इस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो बाइडेन के बयान की कड़ी निंदा की है। पेस्कोव का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में जो बाइडेन का बयान माफी के काबिल नहीं है। दिमित्री पेस्कोव का यह बयान रूस के राष्ट्रपति के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है। उनका कहना था कि बाइडेन ने जो व्लादिमीर पुतिन के संबंध में कहा है वो अस्वीकार होने के साथ ही क्षमा योग्य भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को एक पत्रकार के जवाब में व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था। इससे पहले तक अमेरिकी अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से बचते रहे हैं। असल में हुआ यह था कि एक पत्रकार से बाइडेन क्षमा कीजिएगा असल में हुआ यह था कि एक पत्रकार से एक पत्रकार ने बाइडेन से कहा था कि क्या आप पुतिन को युद्ध अपराधी मानते हैं। इसके जवाब में कुछ देर खामोश रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा कि मैं मानता हूं कि वे युद्ध अपराधी हैं। इसी बीच अमेरिकी सीनेट ने भी रूसी राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी घोषित किया है। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव पारित करके रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी बताया गया है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद सीनेट में बहुमत के नेता ने कहा कि यह प्रस्ताव बताता है कि अमेरिकी सीनेट रूसी राष्ट्रपति के विरुद्ध और यूक्रेन के साथ खड़ी है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम हथियार और लड़ाके भेजकर यूक्रेन में खून खराबे का कारण बन रहा है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी देश हथियार और लड़ाके भेजकर यूक्रेन में मौत का कारण बन रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को के खिलाफ पश्चिम के नए प्रतिबंधों की भर्त्सना की और इन प्रतिबंधों को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नया आघात बताया। पुतिन ने आजकल पश्चिमी देशों में रूसी नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं न दिए जाने की ओर संकेत किया और उसकी उपमा उन यहूदियों से दी जिन्हें विश्व युद्ध के बाद चिकित्सा सेवाएं नहीं दी जाती थी। पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका वर्षों से यूक्रेन सरकार के विस्तृत पैमाने पर सैनिक और गैर सैनिक सहायता व समर्थन कर रहे हैं और यूक्रेन में युद्ध आरंभ होने पर इन देशों ने अपनी सहायताओं को विस्तृत रूप दे दिया है और अब ये देश यूक्रेन में लड़ाके भी भेज रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने इस खबर को अफवाह बताया है कि रूस के साथ कोई शांति समझौता हुआ है। मिखाइलो पोदोलियाफ ने कहा है कि मॉस्को और कीव के बीच 15 सूत्रीय किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बनी है। स्काई न्यूज की वेबसाइट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार के हवाले से बताया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स में जिस 15 सूत्रीय समझौते की बात कही गई है वो केवल रूस की ओर से पेश की गई मांगे हैं, न कि कोई समझौता। उन्होंने कहा कि इस चरण में मैं केवल कुछ बातों की पुष्टि करने के स्थिति में हूं, जैसे रूसी सैनिकों का पीछे हटना तथा कुछ देशों की ओर से सुरक्षा की गारंटी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि क्या इन विषयों पर दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बनी है या नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि निकट भविष्य में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिल सकती। बोरिस जॉनसन का कहना था कि यूक्रेन की नेटो में सदस्यता फिलहाल निकट भविष्य में बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये संभव ही नहीं है। यूक्रेन युद्ध को आरंभ हुए 2 सप्ताह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि मुझको अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि हमारा देश नेटो की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की ने पहली बार इतने स्पष्ट ढंग से ये बात स्वीकार की है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता न मिलने के बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे स्थिति में आया है जब इससे पहले तक ब्रिटेन नेटो में यूक्रेन की सदस्यता का समर्थन कर रहा था। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। राष्ट्रसंघ के महासचिव ने ऐलान किया है कि यमन युद्ध में कम से कम 10,000 यमनी बच्चे मारे गए हैं। यमन की मदद के लिए होने वाली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यमन युद्ध में 10,000 लोग मारे गए हैं जिनमें कम से कम 10,000 बच्चे हैं और यमन में बेघर होने वाले लाखों लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बजट कम होने की वजह से ये स्थिति और बदतर हो गई है। बजट कम होने की वजह से विश्व खाद्य कार्यक्रम लोगों को दी जाने वाली मदद को आधा करने के लिए बाध्य है और ये कमी जारी रहेगी। राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि 80 लाख लोगों को खाद्य पदार्थों को दी जा रही मदद की कमी कर दी गई है, जिसके कारण गंभीर व खतरनाक परिणाम निकलेंगे। हिजाब के मुद्दे को लेकर भारत के कर्नाटक राज्य के मुसलमानों ने आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार स्कूलों में हिजाब के बारे में वहां के हाई कोर्ट के फैसले से असहमत मुसलमानों ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान राशिदी ने हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताते हुए गुरुवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मेरा सभी मुसलमानों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसका सख्ती से पालन करें। उनका कहना था कि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए 17 मार्च को प्रदेश भर में पूरे दिन का बंद का आह्वान किया जाता है। और अंत में समाचार के राष्ट्र संघ ने म्यांमार की सेना की दमनात्मक कार्रवाइयों के कारण उसे युद्ध अपराधी घोषित किया है। रॉयटर के अनुसार राष्ट्रसंघ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें म्यांमार की सेना पर प्रायोजित ढंग से मानवाधिकारों के हनन की बात कही गई है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे इमाम मेहंदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर सामर्रा के आध्यात्मिक वातावरण के बारे में, और फिर बात करेंगे नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान के बारे में।
यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अब इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं कि उनका देश।
और फिर चर्चा करेंगे भारत में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बारे में। और अंत में चलेंगे कश्मीर, जहां हमारे संवाददाता वहां की ताजा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री
तो सबसे पहले बात करते हैं मानवता के अंतिम मुक्तिदाता इमाम मेहंदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ के जन्म दिवस के अवसर पर इराक के पवित्र नगर सामर्रा में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए श्रद्धालुओं के बारे में। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सामर्रा से IRIB के संवाददाता जलाल खालिदी, हमारे साथ ही अहमद अब्बास की आवाज में।
पवित्र सामर्रा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम उत्तराधिकारी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हर ओर मानवता के अंतिम मुक्तिदाता के जल्द प्रकट होने की दुआएं हो रही हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर ईरान समेत दुनिया भर के श्रद्धालु सामर्रा पहुंचे हैं। एक ईरानी श्रद्धालु का कहना है कि हम दुआ करते हैं कि ऐसे मुबारक दिन ہر کوئی پوتر شہر سامرہ آئے اور وقت کے امام کے شبھ جنم دیوس کا جشن منائے۔ بھوگولک درشٹی سے سامرہ عراق کی راجدھانی بغداد سے 120 کلومیٹر اتر میں استھت ہے۔ اس شہر کا ایتہاسک اور دھارمک مہتو اس لیے ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام کے دو پوتر امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ ہے۔ اس استھان کو ایک بات جو اور ادھک مہتوپورن بنا دیتی ہے وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے پتا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر جو سرداب کے نام سے مشہور ہے۔ اتہاس میں ملتا ہے کہ یہ وہی تہخانہ ہے کہ جہاں امام مہدی علیہ السلام کا جنم ہوا تھا اور یہی وہ استھان ہے کہ جہاں سے مانوتا کے انتم مکتی داتا نامعلوم سمے کے لیے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
اللهم عجل لبنيك الفرج والعافية والنجاة۔
ایک بوڑھے شردھالو امام مہدی علیہ السلام کے جلد پرکٹ ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ سرداب سامرہ روزے کے باب الفرج پرانگڑ کے پشچم میں استھت ہے۔ پہلے یہ استھان بہت ہی چھوٹا تھا لیکن پوتر استھلوں کا پنر نرمان کرنے والی سنستھا کی مدد سے کچھ سال پہلے ہی یہ پوتر استھان وکست ہوا ہے۔ اب سینکڑوں لوگ ایک ساتھ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے جلد پرکٹ ہونے کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ سامرہ سے آئی آر کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
اور اب بات کرتے ہیں یوکرین کے راشٹرپتی کے اس بیان کی کہ جس میں انہوں نے یہ صاف کیا ہے کہ ان کے دیش کا ناٹو کا سدس بننا لگ بھگ اسمبھو ہو گیا ہے۔ اس بارے میں اور ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی قائم رضوی۔
یوکرین کے راشٹرپتی بھی اب اس بات سے آشوست ہو چکے ہیں کہ ان کا دیش ناٹو کا سدس نہیں بن پائے گا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہمیں اب یہ بات سویکار کرنی چاہیے کہ یوکرین ناٹو کا سدس نہیں بن سکتا۔ یوکرین کے راشٹرپتی نے ایک بیٹھک میں کہا ہے کہ ہم ورشوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ دروازے کھلے ہیں، لیکن اب یہ سن رہے ہیں کہ ہم ان کے ارتھات ناٹو کے سدس نہیں بن پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک واستوکتا ہے جس کو سویکار کرنا چاہیے۔ بہت ولمب کے ساتھ زیلنسکی نے یہ بات ایسی استھتی میں سویکار کی ہے کہ جب یوکرین کے ورودھ روس کی سینیہ کاروائی کو اب پورے 20 دن گزر چکے ہیں۔ اس دوران یوکرین کو ہر حساب سے نقصان ہوا ہے۔ یوکرین کے ورودھ روس کی کاروائی کا ایک مہتوپورن کارک یہی مدعا ارتھات یوکرین دوارا نیٹو کی سدستا پراپت کرنے کا پریاس تھا۔ سن 2008 میں بخارسٹ سمیلن میں نیٹو کے راشٹرادھیکشوں نے پورو کی اور نیٹو کے وستار کی یوجنا کے انترگت یوکرین اور جارجیا کو سدستا دینے کی گھوشنا کی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہی وشے روس اور یوکرین کے بیچ گمبھیر مدبھید کا کارن بن گیا تھا۔ حالانکہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہی وشے روس کی ریڈ لائن ہے جس کے بارے میں وہ بہت ہی سمویدنشیل ہے۔ روس نے حالیہ مہینوں کے دوران کئی بار نیٹو اور امریکہ سے یہ کہا تھا کہ یوکرین کی نیٹو میں سدستا کے مدعے کی بات کو سماپت کر دیا جائے۔ پشچم نے ہمیشہ ماسکو کی اس مانگ کا ورودھ ہی کیا۔ واستو میں امریکہ نے یوکرین کو نیٹو کی سدستا حاصل کرنے کے لیے سب سے ادھک اکسایا۔ اپنی وستاروادی نیتیوں کو بڑھانے اور روس پر دباؤ بنانے کے ادیش سے امریکہ نے نیٹو میں یوکرین کی سدستا کے لیے بہت زور لگایا۔ اس سمے ایک اور سے تو زیلنسکی نے یہ بات مان لی ہے کہ یوکرین نیٹو کی سدستا حاصل نہیں کر سکتا، لیکن دوسری اور ان کے دیش کو روس کی سینیہ کاروائی سے لگاتار جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے میں ان کو سرکشا کی گارنٹی دینے والے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا اور چرچا کرتے ہیں بھارت کے دکشن راج کرناٹک کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حجاب اسلام دھرم کی انیوار پرتھا نہیں ہے۔ اس بارے میں دلی سے آئی آر آئی بی کے سنواد داتا حسن عبد المالکی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی محمد مہندی کی آواز میں۔
مسکان خان دوارا اللہ اکبر کے لگائے گئے زوردار نعروں اور اسکول کی چھاتروں دوارا حجاب میں اسکولوں اور وشو ودیالیوں میں پرویش پر پرتیبندھ لگانے اور اپنے حجاب کا بچاؤ کرنے کی عدالت میں کی گئی شکایت کے ایک مہینے بعد کرناٹک کے ہائی کورٹ نے آخرکار اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے فیصلے کے خلاف جس میں کہا گیا ہے کہ हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य प्राथमिक प्रथा नहीं है, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले पर भारत की मुस्लिम महिलाओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कुछ मुस्लिम छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिजाब के संबंध में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक बताया और कहा कि ये निर्णय कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली हिजाब पहनने वाली महिलाओं के लिए असुरक्षा का वातावरण पैदा करेगा, ऐसे स्थिति में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा का उन्हें निशाना बनाया जाएगा। महिलाओं ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत का संविधान मुस्लिम महिलाओं को भी अपने धर्म के अनुसार काम करने की अनुमति देता है। एक मुस्लिम छात्रा का कहना है,
संविधान की जो बेसिक वैल्यूज है, जो धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को संविधान जो स्थान देता है, ये फैसला कहीं ना कहीं उसे कमतर करने का प्रयास करेगा और संवैधानिक वैल्यूज कम होंगी तो इसपे भारत के हर समुदाय पे प्रभाव पड़ेगा।
भारत की मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हाई कोर्ट का ये फैसला गलत है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मुस्लिम छात्रों ने कहा कि हिजाब पहनने का मुद्दा एक धार्मिक मुद्दा है जिस पर फैसला केवल धार्मिक धर्मगुरु ही कर सकते हैं, न कि अदालतें। एक मुस्लिम महिला का कहना है,
कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगी कि ये जो है रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है, कोर्ट इज नन। उनको कहना नहीं चाहिए, उनको एक एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। अगर जो कोई कहेगा कि मैं इस तरह में रहना पसंद करती हूँ, मेरा बिलीफ है, तो इंक्लूसिव जो रिलीजन के अंदर रहने वाले स्कॉलर हो या फॉलोअर हो, वो कहेगा या कहेगी कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है।
दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हिजाब करने वाली छात्रों और महिलाओं ने कहा कि हम शैक्षणिक केंद्रों में यूनिफार्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम सरकारों और अदालतों से चाहते हैं कि यूनिफार्म में हिजाब पहनने वाली महिलाओं का भी ध्यान रखा जाए। दिल्ली से IRIB के लिए हसन अब्दुल मलिकी की रिपोर्ट।
और अब चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर, जहां अलगाववादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी झड़पों के मध्य इस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली सरकार से कश्मीर के संबंध में अपनी नीतियों में बदलाव का आह्वान किया है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नई दिल्ली कश्मीर के हवाले से गंभीर नहीं है और आए दिवस जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनता के हित में नहीं है। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ नई दिल्ली कश्मीर में तजुर्बे कर रहे हैं, मेरा उनसे ये मुतालबा भी है और विनती भी है कि वो इन तजुर्बात को बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की जरूरत है, परंतु उनके साथ जो व्यवहार उनके अनुसार नई दिल्ली ने रवा रखा है वो गैर मुनासिब है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोगों को अगर जीतना है तो उनके हित में निर्णय लेने होंगे। उन्होंने कहा कि विशेष इख्तियार छीनने के बाद कश्मीरी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और उनके दिल दुखी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
देखिए जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर, तो PDP एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर को खुदा ना खास्ता उन्होंने एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है जहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा उन्होंने दफन कर रखा है। इसके खिलाफ तुम आवाज उठाते रहेंगे।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। श्रीनगर के निकटवर्ती क्षेत्र नौगाम में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादी छापामारों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ में 3 अलगाववादी छापामारों के हताहत होने की सूचना है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो स्थानीय है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात।
آج کی بات۔
دوستو، کارکرم آج کی بات لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ آج ہم چرچا کریں گے کہ کیا چناؤ کے بعد بھارت میں بے روزگاری کا مدعا ابھی بھی جولنت ہے یا نہیں۔ اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ بھارت کے پانچ راجیوں کے پریڑام سامنے آ گئے ہیں اور پانچ میں سے چار راجیوں میں بھاجپا نے پرچنڈ جیت درج کی۔ بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی چار راجیوں میں جیت کے دوسرے ہی دن احمد آباد میں اپستھت ہوئے اور وکٹری کا نشان بنانے لگے۔ ان کے لیے سیریل کی طرح راجنیت کا سیٹ ہر جگہ بنا ہوتا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی یو پی نامک فلم کے سیٹ سے نکل کر گجرات نامک فلم سیٹ پر پہنچ گئے۔ راجنیتی میں نیتا کو فلم کے ابھینیتا کے طور پہ بھی جینا پڑتا ہے۔ احمد آباد ریلی میں دیکھا گیا کہ پردھان منتری کی سرکشا کا کوئی مدعا نہیں، جیپ کو پھولوں سے سجایا گیا ہے اور کھلی ہوئی جیپ جنتا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، راستوں کو غباروں سے بھر دیا گیا۔ اتر پردیش اپنے آپ میں دیش کے بھیتر ایک دیش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گجرات کے چناؤں کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ کچھ سماچار پتروں کا کہنا ہے کہ بھاجپا 69 ودھائکوں کے ٹکٹ کاٹ دے گی اور جن کے کٹیں گے ان میں پورو مکھیہ منتری بھی ہیں اور پورو اپ مکھیہ منتری بھی۔ اخبار میں پورو مکھیہ منتری وجے روپانی کا بیان بھی چھپا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کہے گی تو لڑوں گا اور نہ کہے گی تو نہیں لڑوں گا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ گجرات میں چناؤ کا پہیا گھومنے لگا ہے اور وپکشی دل ٹویٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے گجرات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جب بھی بھاجپا جیتتی ہے تو سوتنتر پترکاروں اور میڈیا پر کٹاکش ہونے لگتے ہیں کہ بیگاری، بے روزگاری اور مہنگائی پر سوال کرنا بند کر دیں، جنتا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیول بھاجپا کے سمرتھک ہی نہیں کہتے بلکہ ویرودھیوں کا بھی کہنا ہے کہ ان مدوں کو اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جنتا ہی ایسی ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزگار کے مدے کی کیسے اندیکھی کی جا سکتی ہے؟ روزگار کا معاملہ تو اکھلیش یادو کو بھی اٹھانا پڑا اور دوسرے دلوں کو بھی، دونوں ہی ہار گئے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ بی جے پی روزگار کے مدے پر حساب نہیں دے رہی تھی۔ چناؤ شروع ہونے سے پہلے روزگار کے مدے پر کروڑوں روپے کے وگیاپن دیے گئے۔ دعوے کیے گئے سنکلپ پتر میں بی جے پی نے لکھا کہ پچھلے 5 سال میں 3.5 کروڑ روزگار دیے گئے یا سوروزگار دیے گئے، اور اگلے 5 سال میں ہر پریوار میں 1 روزگار یا 1 سوروزگار دیں گے۔ گورکھپور کے کچھ نوجوانوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا بے روزگاری کے مدے کا راجنیتک انت ہو چکا ہے تو ان کا کہنا تھا،
اگر اتر پردیش کے پریپرچ میں دیکھا جائے تو پشچم اتر پردیش میں بے روزگاری کوئی مدعا نہیں تھی، وہاں پہ قانون ویوستھا ایک مدعا تھا جس پہ یوگی سرکار وہاں پہ لیڈ کر گئی۔ اور رہی بات، کیونکہ سب سے بڑا کارن وہاں کیا تھا کہ وہاں پہ پوروانچل کے اپیچھا پشچم میں سمپنتا زیادہ ہے، بڑے بھومی کسان تھے، تو کسان آندولن نے تھوڑا سا پربھاؤ وہاں پہ چھوڑا، جو بی جے پی کو جو تھوڑی بہت سیٹوں کا نقصان ہوا۔ جو روزگار کا جو مدعا تھا وہ سب سے بڑا مدعا پوروانچل بیلٹ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ غریبی زیادہ ہے اور لوگ سرکاری نوکری کی طرف زیادہ آکرشت ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پشچم اتر پردیش میں جب ان کا کیمپین چل رہا تھا تو چاہے پردھان منتری ہو چاہے مکھیہ منتری، انہوں نے کبھی بھی روزگار پہ بات ہی نہیں کی۔ اس بات کو آپ بھی گراؤنڈ پہ دیکھ ہی رہے ہیں، اور جیسے پوروانچل پہ جب شفٹ ہوا ان کا کیمپین تو خود مکھیہ منتری نے کہا کہ اب اگلی بار جب سرکار میں آئیں گے تو گھر گھر ایک 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 گھر پہ ایک نوکری ہم ضرور دیں گے۔ تو کارن کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مدعا ہے بے روزگاری عام، اور اس نے سرکار نے اس کو بھلانے کا پریاس پوروانچل بیلٹ میں کیا، نہ کہ پشچم میں کیا۔
نہیں، نوجوانوں نے تو اس کو مدعا اٹھایا، لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چنندہ میڈیا چینلوں نے اس جینوئن مدعے کو اٹھایا، لیکن یہ پورا ایک بھو سپورٹ نہیں مل پایا اس جینوئن مدعے کو، اور کہیں نہ کہیں اس کو ہم لوگ وپکش کا فیلئر بھی مان سکتے ہیں کہ وہ ایک بیک کیا ہوا کہ کورونا کال کے بعد جگی اور ترنت سیٹ کو پانے کے لیے بس اتاولی دیکھی، جنتا کے جینوئن اور ویکتیگت مدوں سے ریلیٹڈ ان کا کوئی ناتا نہیں تھا۔
نہیں ہے، روزگار اور مہنگائی مدعا تو تھا ہی،
युवाओं के पास विकल्प कम थे। युवाओं ने 12 और 2012-17 के बीच अखिलेश सरकार को भी देखा था, रोजगार तो मिलते थे लेकिन बहुत ही फेयर चांस उनको नहीं मिलता था, होता था कि सीट बिक गई और वे वगैरह। रोजगार तो हमेशा से मुद्दा रहेगा। बीजेपी सरकार में ये है कि अब जनता ने इनको अगर इस बार जिताया है तो ये ना समझें कि रोजगार और महंगाई मुद्दा नहीं है। इनको एक चांस दिया गया है, 2 साल का चांस है, अगर इनको अगर ये रोजगार और महंगाई के मुद्दे को सॉल्व नहीं करते हैं तो 2024 में जनता इनको हटा देगी।
बेरोजगारी एक मुद्दा तो है और हर सरकारों में रहा है, और रही बात भाजपा की तो सर भाजपा ने रोजगार दिया भी है और कहीं कहीं किसी किसी विभागों में रोजगार नहीं मिला है, इससे बच्चे जो है असंतुष्ट हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो मौका मिला है भाजपा को 5 साल के लिए, उसमें जो है जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो हल हो, जो अभी तक नहीं हल पाया।
पिछला साल जो अब आपका कार्यकाल गया उसमें चलिए कि ठीक है सरकार को काम करने के 3 साल का वक्त मिला, जिसकी वजह से बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं हाईलाइट हो पाया, क्योंकि 2 साल जो काम था वो पूरा शुद्ध रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा थी।
बीजेपी को वोट देने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 2012 से जो 17 में श्री अखिलेश यादव जी का जो सरकार था, पारदर्शिता के अभाव में जो भर्तियों में गड़बड़ियां देखी गई, अब जो उम्मीद थी इस वजह से अखिलेश की तरफ वोट इसलिए नहीं गया क्योंकि युवाओं ने माना कि अगर फिर आएंगे तो वो सिस्टम चालू होगा, और इनमें है कि थोड़ी पारदर्शिता देखने को मिली।
छात्रों के इन जवाबों को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि चुनाव खत्म हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात।
वहीं पर खड़े एक अन्य छात्र ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में आकर घर घर में रोजगार देने की बात की, इसीलिए ये बात करनी पड़ी कि यहाँ ये मुद्दा था, यहाँ पश्चिम की तुलना में ज्यादा गरीबी थी।
अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं थी, वहाँ पे कानून व्यवस्था एक मुद्दा था जिसपे योगी सरकार वहाँ पे लीड कर गई। और रही बात, क्योंकि सबसे बड़ा कारण वहाँ क्या था कि वहाँ पे पूर्वांचल के अपेक्षा पश्चिम में संपन्नता ज्यादा है, बड़े भूमि किसान थे, तो किसान आंदोलन ने थोड़ा सा प्रभाव वहाँ पे छोड़ा, जो बीजेपी को जो थोड़ी बहुत सीटों का नुकसान हुआ। जो रोजगार का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वांचल बेल्ट में है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और इस वजह से जो है तो आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उनका कैंपेन चल रहा था तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी भी रोजगार पर बात ही नहीं की। इस बात को आप भी ग्राउंड पे हैं देख ही रहे हैं, और जैसे पूर्वांचल पे जब शिफ्ट हुआ उनका कैंपेन तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगली बार जब सरकार में आएंगे तो घर घर एक 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 घर पे एक नौकरी हम जरूर देंगे। तो कारण क्या था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी यहाँ पे।
अच्छा,
और उसने सरकार ने इसको भुलाने का प्रयास पूर्वांचल बेल्ट में किया न कि पश्चिम में किया।
नहीं, नौजवानों ने तो उसको मुद्दा उठाया, लेकिन इसमें ये कहना चाहूंगा कि कुछ चुनिंदा मीडिया चैनलों ने इस जेन्युइन मुद्दे को उठाया जिसमें आप भी थे, लेकिन ये पूरा एक भव्य सपोर्ट नहीं मिल पाया इस जेन्युइन मुद्दे को।
अच्छा।
और कहीं न कहीं इसको हम लोग विपक्ष का फेलियर भी मान सकते हैं कि वो एक बैग क्या हुआ कि कोरोना काल के बाद जगी और तुरंत सीट को पाने के लिए बस उतावली दिखी, जनता के जेन्युइन और व्यक्तिगत मुद्दों से रिलेटेड उनका कोई नाता नहीं था।
जितना लोग बताते थे कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है तो जमीन पर यह मुद्दा नहीं था, कहीं ना कहीं तभी इतनी बड़ी जीत मिली है।
ऐसा नहीं है, रोजगार और महंगाई मुद्दा तो था ही।
हाँ।
युवाओं के पास विकल्प कम थे। युवाओं ने 12 और 2012-17 के बीच अखिलेश सरकार को भी देखा था, रोजगार तो मिलते थे लेकिन बहुत ही फेयर चांस उनको नहीं मिलता था, होता था कि सीट बिक गई और वे वगैरह। रोजगार तो हमेशा से मुद्दा रहेगा। बीजेपी सरकार में ये है कि अब जनता ने इनको अगर इस बार जिताया है तो ये ना समझें कि रोजगार और महंगाई मुद्दा नहीं है। इनको एक चांस दिया गया है, 2 साल का चांस है, अगर इनको अगर ये रोजगार और महंगाई के मुद्दे को सॉल्व नहीं करते हैं तो 2024 में जनता इनको हटा देगी।
बेरोजगारी एक मुद्दा तो है और हर सरकारों में रहा है, और रही बात भाजपा की, तो सर भाजपा ने रोजगार दिया भी है और कहीं कहीं किसी किसी विभागों में रोजगार नहीं मिला है, जिससे बच्चे जो है असंतुष्ट हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो मौका मिला है भाजपा को 5 साल के लिए, उसमें जो है जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो हल हो, जो अभी तक नहीं हल पाया। पिछला साल जो आपका कार्यकाल गया उसमें चलिए कि ठीक है सरकार को काम करने के 3 साल का वक्त मिला, जिसकी वजह से बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं हाईलाइट हो पाया, क्योंकि 2 साल जो काम था वो पूरा शुद्ध रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा थी।
बीजेपी को वोट देने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 2012 से जो 17 में श्री अखिलेश यादव जी का जो सरकार था, पारदर्शिता के अभाव में जो भर्तियों में गड़बड़ियां देखी गई, अब जो उम्मीद थी इस वजह से अखिलेश की तरफ वोट इसलिए नहीं गया क्योंकि युवाओं ने ये माना कि अगर फिर आएंगे तो वो सिस्टम चालू होगा, और इनमें है कि थोड़ी पारदर्शिता देखने को मिली।
बेरोजगारों में भाजपा के ही उतने ही समर्थक हैं। कुछ का सब्र टूट गया तो कुछ एक और मौका देना चाहते थे। चुनाव शुरू होने से पहले रेलवे की परीक्षा को लेकर छात्रों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू किया। आपको याद होगा कि सुशील मोदी और रेल मंत्री किस प्रकार उस समय सक्रिय हो गए थे। छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए हाई पावर कमेटी बनी। 5 मार्च को रेल मंत्री ने ट्वीट किया कि कमेटी के सामने 3 लाख सुझाव आए। 10 मार्च को सुशील मोदी ने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया, कहा कि सभी मांगे मान ली गई हैं। इसके जवाब में रेल मंत्री का एक ट्वीट है, छात्र हित राष्ट्र हित। सुशील मोदी का उस समय कहना था,
जो एनटीपीसी के परीक्षार्थियों की मांग थी कि 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, एक छात्र एक रिजल्ट, उसको स्वीकार करते हुए बहुत शीघ्र यानी अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक जो बच्चे में परिणामों घोषित कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार ग्रुप डी की 2 के बजाय एक परीक्षा होगी। ग्रुप डी के छात्रों की जो अन्य मांग थी कि जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो पहले के समान बरकरार रखा जाए, और EWS सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी समय अगर प्राप्त किया गया हो तो वह भी स्वीकार किया जाए। तो आपकी इन तमाम मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन के कारण जो लड़कों को भ्रम हो रहा था उसके अंदर भी काफी सुधार किया गया है। तो मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने इस मांग को उठाया।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इन दिनों दुनिया के साथ संवाद और रचनात्मक बातचीत के विषय पर विचारकों ने पहले से कहीं अधिक ध्यान केंद्रित किया हुआ है, लेकिन उसमें पाए जाने वाले अभाव ने हमें एक तनावपूर्ण और हिंसक दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। इस संबंध में विशेषज्ञों की उपस्थिति और सक्रियता और निष्क्रिय सार्वजनिक कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी और रचनात्मक मौजूदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में माना जा सकता है। बेहतर जीवन के लिए अर्थव्यवस्था की प्रगति के अलावा सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार मानव प्रतिभा और क्षमताओं के विकास के लिए जरूरी है। मनुष्य ही समाज में विकास की दिशा और उसकी गति को निर्धारित करता है। चूंकि संस्कृति मानव विकास का आधार है और सांस्कृतिक विकास को सर्वांगीण और सतत विकास का आधार माना जाता है, और दूसरी ओर प्रत्येक समाज को सतत विकास प्राप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं और मानव संसाधनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।
इसी बुनियाद पर इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में चरमपंथ और हिंसा के खिलाफ और विश्व स्तर पर रचनात्मक बातचीत पर आधारित एक प्रस्ताव पेश किया गया। ईरानी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित भी हुआ। शांति एवं सुरक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राजदूतों द्वारा उच्च शिक्षा में कुलीन और प्रभावशाली महिलाओं का साक्षात्कार भी लिया गया। ईरानी महिला विचारक और प्राचीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली विशेषक, जिनमें ईरान की इस्लामी संस्कृति की ऐतिहासिक क्षमता है, वे इस्लाम की शिक्षाओं से लाभान्वित होकर सांस्कृतिक विकास से संबंधित नए सिद्धांतों में अन्य विचारकों के साथ अपने विचारों और क्षमताओं के साथ एक भूमिका निभाती हैं और देश के विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए विशेष सहयोग का एक नेटवर्क बनाने का प्रयास करती हैं।
वर्तमान में दुनिया के साथ संवाद और रचनात्मक बातचीत के महत्व को देखते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय ने महिलाओं के क्षेत्र में ईरानी समाज में महिलाओं और अन्य समाजों में महिलाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम किया है। यही कारण है कि ईरानी विदेश मंत्रालय की महिला राजनयिक हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती रही हैं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस्लामी सभ्यता का पालन और संरक्षण करते हुए इस्लामी गणतंत्र ईरान की एक महिला की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि एक मुस्लिम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के हितों को बढ़ाने में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकती है।
हाल ही में नागरिक अधिकारों के मामले में विदेश मंत्रालय की पूर्व सहायक अफसाना नादीपुर ने डेनमार्क में चौथी महिला ईरानी राजदूत के रूप में अपना राजनयिक कार्यभार आरंभ किया। उन्होंने मुर्तजा मुरादियान का स्थान लिया है। अफसाना नादीपुर का जन्म वर्ष 1967 में ईरान के ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर इस्फहान में हुआ था। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में हुआ विस्तार किसी से छिपा नहीं है। डेनमार्क में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राजदूत के पद पर चौथी महिला की नियुक्ति ईरान द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और विस्तार को दर्शाता है। इस्लामी क्रांति के सफलता के बाद से ईरान में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। ईरानी महिलाओं ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का खुलकर प्रदर्शन किया और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया कि एक मुसलमान महिला इस्लाम के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकती है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता बहराम कासिमी को जब बदला जा रहा था तब भी अफसाना नादीपुर को विदेश मंत्रालय के संभावित प्रवक्ता के रूप में बहराम कासिमी के एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। इसी तरह नादीपुर के कार्य अनुभवों में टोक्यो में स्थित ईरानी दूतावास में कूटनायिक गतिविधि एवं मानवाधिकार की उपनिदेशक और द हेग के रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के लिए ईरानी प्रतिमंडल की सदस्य के तौर पर कार्यरत रही हैं। नादीपुर कहती हैं कि विदेश विभाग में सक्षम महिला राजनयिकों की संख्या बढ़ाने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक एक अच्छा संदेश पहुंचाया जा सकता है, विशेषकर मानवाधिकार और महिला अधिकारों के क्षेत्र में, क्योंकि इस्लामी गणतंत्र ईरान के कुछ दुश्मन यह आरोप लगाते हैं कि ईरान में महिला अधिकारों का उल्लंघन होता है। अफसाना नादीपुर कहती हैं कि वास्तविकता यह है कि ईरानी महिलाएं हर क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता के साथ मौजूद हैं, बल्कि ईरान में हर क्षेत्र में महिलाओं की जितनी भागीदारी है शायद ही दुनिया के कुछ ही देश होंगे जहां महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी होगी। नादीपुर कहती हैं कि विदेशी विभाग में सक्षम महिला राजनयिकों की संख्या बढ़ाए जाने से दुश्मनों के इन दावों की भी हवा निकल जाएगी। वह कहती है कि इस्लामी क्रांति की संस्कृति से प्रेरित होकर ईरानी महिलाओं ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि उनकी संस्कृति सामाजिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपस्थिति है। नादीपुर कहती हैं कि धार्मिक विश्वास और इस्लामी मूल्य महिलाओं को न केवल ये कि किसी भी क्षेत्र में भाग लेने से नहीं रोकते बल्कि यह अन्य गतिविधियों को सही दिशा में निर्देशित करते हैं।
दोस्तों, ईरान में मौजूद इस्लामी व्यवस्था में हर क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं का मानना है कि वो धार्मिक विश्वासों और इस्लामी मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और उन्हें उनकी प्रगति में इस प्रतिबद्धता से किसी भी तरह की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है। इन महिलाओं का ये भी मानना है कि वे अपने अनुभवों को उन देशों की महिलाओं के साथ साझा करना चाहती हैं जो धार्मिक विश्वासों और इस्लामी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहती हैं। इन महिलाओं का मानना है कि बहुत से ऐसे देश हैं कि जहां पूरी तरह इस्लामी कानून लागू हैं और वहां महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उपस्थिति बहुत कम है। इसलिए इस्लामी गणतंत्र ईरान की महिलाएं जिन्होंने इस्लामी सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करते हुए हर क्षेत्र में प्रगति और विकास किया है और कर रही हैं, वे चाहती हैं कि अपने इन्हीं अनुभवों को उन देशों की महिलाओं तक पहुंचाएं जो धार्मिक विश्वासों और इस्लामी मूल्यों को गलती से अपने लिए रुकावट समझती हैं, जबकि धार्मिक विश्वास और इस्लामी मूल्य हमारी प्रगति और विकास में हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
डॉक्टर नादीपुर मलेशिया में ईरानी राजदूत मर्जिया अफखम, ब्रुनेई में ईरानी राजदूत हुमैरा रिगी और फिनलैंड में ईरानी राजदूत फिरोजंदे विदती के बाद इस संवेदनशील पद को संभालने वाली चौथी ईरानी महिला हैं। नादीपुर के अनुसार महिला कूटनीति की क्षमता का उपयोग यह संदेश देता है कि महिलाएं शांति के एजेंडे में अपने लक्ष्यों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर अधिक प्रभावी हो सकती हैं। नादीपुर को विदेश मंत्रालय में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उनकी मुख्य गतिविधियां इस मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय विभाग में रही हैं। नादीपुर ने जहां यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की है, वहीं उनके पास तेहरान विश्वविद्यालय के कानून और राजनीति विज्ञान संकाय से स्नातक की मास्टर डिग्री भी है। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा अफसाना नादीपुर ने अल्लामा ताबाताबाई विश्वविद्यालय के कानून और राजनीति विज्ञान संकाय से अंतर्राष्ट्रीय कानून में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने विदेश मामलों के संकाय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में एक वर्ष का विशेष डिप्लोमा कोर्स भी किया है।
दोस्तों, इस्लामी गणतंत्र ईरान की राजदूत शादीशुदा हैं और उनकी दो बेटियां भी हैं। नादीपुर ने डेनमार्क में ईरानी राजदूत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के विकास को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में काफी अहम काम अंजाम दिए हैं। इसके अलावा डेनमार्क में रहने वाले ईरानी हमवतनों के मामलों को सुविधाजनक बनाने और डेनमार्क साम्राज्य के साथ आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। डेनमार्क में इस्लामी गणतंत्र ईरान की राजदूत ने ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और डेनिश अखबार पॉलिटिकॉन में एक लेख में लिखा है कि एक मजबूत और उन्नत स्वास्थ्य प्रणाली होने के बावजूद ईरान को अमरीकी प्रतिबंधों के कारण कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दवाओं और खाद्य पदार्थों सहित मानवीय जरूरतों की चीजों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, जबकि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस पर बल दिया गया है कि मानवीय जरूरतों की किसी भी चीज पर प्रतिबंध न लगाया जाए। इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को दवा और चिकित्सा उपकरण, खाद और कृषि उत्पादों के निर्यात में किसी भी बाधा को तत्काल हटाने के लिए अदालत के अंतरिम आदेश की भी न केवल अनदेखी की बल्कि अधिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सफल महिलाएं, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिम यूक्रेन को हथियार देकर और लड़ाके भेजकर यूक्रेन में खून खराबे का कारण बन रहा है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। खुदा हाफिज। Thank you.